ऋग्वेदीय ब्राह्मण एक क ऐतरेय ब्राह्मण एक ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास ऐतरेय ऋषि माने जाते हैं। ऐतरेय ऋषि के माता पिता के नामों में कुछ मतभेद है। षड गुरु शिष्य 12वीं शती ईस्वी ने ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में उल्लेख किया है कि महिदास याज्ञवल्क नामक ब्राह्मण के पुत्र थे और उनकी द्वितीय भार्या इतराम उनकी माता थी। ईसायण ने भी महिदास की माता का नाम इतरा माना है। स्कंद पुराण के अनुसार महिदास हारित वंशज मांडुकी ऋषि के पुत्र थे और माता का नाम इतरा था। ब्रह्मसूत्र के मध्वभाष में ब्रह्मांड पुराण का श्लोक उद्धृत किया गया है कि महिदास की माता इतरा थी। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार महिदास ऐतरेय को 116 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। अवेस्ता में ऋत्विज के अर्थ में ऐतरेय शब्द है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने ऐतरेय का संबंध ऐतरेय से स्थापित किया है। इस प्रकार ऐतरेय को वेदकालीन ऋषियों में गिना जाएगा। दो ऐतरेय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है। प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका होती है। इस प्रकार पूरे ग्रंथ में 8 पंचिकाएं हैं। अध्यायों को खंड में विभाजित किया गया है, उन्हें खंडिका कहते हैं। पूरे ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय 8 पंचिकाएं और 285 खंड हैं। ऋग्वेद होत्री होता नामक ऋत्विज के कार्यकलापों का वर्णन करता है। अतः इस ब्राह्मण में होता विषयक पक्ष के विशेष में मांसा की गई है। होता मंडल में 7 ऋत्विज होते थे। इनके नाम है 1 होता, 2 मैत्रावरुण, 3 ब्राह्मणाच्छंसी नेष्टा, 5 पोता अच्छावाग, 7 आग्निध्र। ये सभी सोमयागों के तीनों सवनों में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते थे। पंचिकाओं के अनुसार वर्ण विषय इस प्रकार हैं। पंचिका 1 और 2 इनमें अग्निष्टोम याग में होता के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। अग्निष्टोम याग सभी सोमयागों का आधारभूत है, अतः इसका विशेष विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पंचिका 3 और 4 इनमें तीनों सवनों अर्थात प्रातः मध्यान्ह और सायंकालीन यज्ञों में बोले जाने वाले मंत्रों शास्त्रों का उल्लेख है। इसके साथ ही अग्निष्टोम की विकृतियों अर्थात उक्त अतिरात्र और षोडशी नामक यागों का भी संक्षिप्त विवरण दिया है। इसी में गवामयन आदि 17 यागों का भी वर्णन है। 17 याग का अभिप्राय है 1 वर्ष तक चलने वाले याग। ये यज्ञ प्रातः मध्यान्ह और सायं 3 बार होते थे। इन्हें 3 सवन कहा जाता है। पंचिका 5 इसमें द्वादश नामक सोमयागों का वर्णन है। इसमें अग्निहोत्र का भी वर्णन है। पंचिका 6 इसमें कई सप्ताह चलने वाले सोमयागों का वर्णन है। इसमें होता आते ऋतुजों के कार्यों का विवेचन है। इसमें बाल खिले आदि खिल सुक्तों की भी विशद समीक्षा है। पंचिका 7 इसका मुख्य विषय राजसूय यज्ञ है। इसके तृतीय अध्याय में सुप्रसिद्ध शुनःशेप हरिश्चंद्र उपाख्यान है जो चरैवेति गाथाओं के कारण विख्यात है। पंचिका 8 इसके प्रथम 2 अध्यायों में राजसूय याग का ही वर्णन है। अंतिम 3 अध्याय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें ऐन्द्र महाभिषेक तथा चक्रवर्ती नरेशों के महाभिषेक का वर्णन है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में 10 प्रकार की शासन पद्धतियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इनके शासकों के नाम दिए हैं। ये शासन प्रणालियां भारतवर्ष के किन क्षेत्रों में प्रचलित थी इसका भी विवरण दिया है। अंतिम अध्याय में पुरोहित के धार्मिक और राजनीतिक महत्व का प्रतिपादन है। इसमें शत्रुनाशार्थ एक अद्भुत ब्रह्म परिमर नामक प्रयोग का वर्णन है जिसमें ब्रह्म वायु के अंतर्गत विद्युत वृष्टि सूर्य चंद्रमा और अग्नि का समावेश वर्णित है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण सोमयाग के विभिन्न स्वरूप का विशद वर्णन प्रस्तुत करता है। 3 ऐतरेय ब्राह्मण का महत्व। ऐतरेय ब्राह्मण धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक और ऐतिहासिक आदि दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कतिपय विशेषताएं ये हैं। 1 यज्ञ का महत्व। यज्ञ ब्रह्म का रूप है, यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ब्रह्म की उपासना है, यज्ञ पर्यावरण को शुद्ध करता है। ब्रह्म वै यज्ञ विष्णुर्वै यज्ञ अयम वै यज्ञो यो अयम पवते। 2 विष्णु का देवों में महत्व। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया गया है। विष्णु में सभी देव आ जाते हैं। अग्नि प्रथम देवता है और विष्णु परम अंतिम देवता है। सभी देवता इन दोनों के मध्य में आ जाते हैं। इसी आधार पर पुराणों में विष्णु को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। विष्णु सर्वा देवता अग्निर्वय देवा नाम वो विष्णु परम। 3 आचार शिक्षा। यज्ञ में दीक्षा लेने के बाद सत्य बोलना अनिवार्य है, तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वतितव्यम्। 4. 10 प्रकार के शासन प्रणाली। ऐतरेय ब्राह्मण में राजनीति शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। इसी अष्टम पंचिका के अध्याय 4 में 10 प्रकार के शासन प्रणालियों का उल्लेख है, साथ ही उनके शासकों के नाम भी दिए गए हैं। इनके नाम तथा शासकों के नाम इस प्रकार हैं: 1. साम्राज्य सम्राट, 2. भैज्य भोज, 3. स्वराज्य स्वराट, 4. वैराज्य विराट, 5. परमेष्ठ परमेष्टि, 6. राज्य राजा, 7. महाराज्य महाराजा, आधिपत्य अधिपति, 9. स्वावश्य, 10. आतिष्ठ। इसी प्रसंग में ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन है कि ये शासन प्रणालियां किन प्रदेशों में प्रचलित हैं। इन प्रदेशों में पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के राज्यों के अतिरिक्त उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, कुरु पांचाल आदि का उल्लेख है। 5. राजा के द्वारा देशभक्ति की शपथ लेना। प्रत्येक राजा के लिए अनिवार्य था कि वह राज्याभिषेक के समय निम्न शपथ अवश्य ले। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहित राजा को यह शपथ दिलाता था, जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, उन दोनों के मध्य में मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हों वे सब नष्ट हो जाएं और मैं स्वर्ग, समस्त शुभ कर्म, आयु और संतान से वंचित हो जाऊं। यदि मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे प्रति अर्थात देश और जनता के प्रति द्रोह करूं। यह राजा के लिए वस्तुतः कठोर अनुशासनात्मक निर्देश था। 6. वैज्ञानिक तथ्य। ऐतरेय ब्राह्मण के 30वें अध्याय में वर्णन है कि प्रारंभ में पृथ्वी अत्यंत गर्म थी और वह मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं थी। उसी उष्णता के कारण पृथ्वी ऊंची नीची हो गई है। 7. यागों का विभाजन। ऐतरेय ब्राह्मण में समस्त श्रौत यागों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। ये हैं अग्निहोत्र, दश पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग और सोमयाग। सोमयाग को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसकी 7 संस्थाएं मानी जाती हैं। यह अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरियम। श्रौत यागों के संपादन के लिए चारों वेदों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य 4 ऋत्विज होते थे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इनके सहायकों को लेकर संपूर्ण यज्ञ में 17 ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। इनके कार्यों का भी विभाजन है। अग्निष्टोम का ही दूसरा नाम ज्योतिष्टोम भी है। यह सारे सोमयागों का आधार माना जाता है। इसमें परमात्मा की ज्योति के रूप में स्तुति की जाती है, अतः इसे ज्योतिष्टोम कहते हैं। एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यत ज्योतिष्टोम ज्योतिर्भूतम अस्तुवन तस्मात् ज्योतिष्टोमम इत्याचक्षते। 8. दीक्षित क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मण। अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य ऐतरेय ब्राह्मण में भी दीक्षा का बहुत महत्व है। अतएव सर्वप्रथम दीक्षणीया इष्टी का विधान है। इसमें दीक्षा की विधि दी है। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण ने आदेश दिया है कि दीक्षित यजमान चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य, उसे ब्राह्मण ही कहना चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। क. स क्षत्रिय दीक्षमाण एव ब्रह्मणा ताम अभ्युपैति। ख. तस्मादपि दीक्षितम राजन्यम वा वैश्यम वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्। 9. अतिथि सत्कार। अथर्वेद के तुल्य ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में अतिथि सत्कार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसके लिए आतिथ्य इष्टि का विधान है। सोम का राजा के रूप में आने पर बहुत विस्तार से अतिथि सत्कार का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि अतिथि विष्णु का रूप है। क. शिरो वा एतत् यज्ञस्य यद् आतिथ्यम्। ख. अथ यद् आतिथ्येन यजन्ते विष्णुमेव देवतां यजन्ते। 10. चरैवेति की शिक्षा। ऐतरेय ब्राह्मण की सबसे प्रमुख शिक्षा है चरैवेति चरैवेति। चर एव एति अर्थात चलते रहो चलते रहो। सदा कर्म करते रहो, सदा उद्योगशील रहो, निरंतर कर्मठ बने रहो। कर्मनिष्ठ जीवन ही जीवन है। इंद्र इच्छरतः सखा। परमात्मा भी कर्मठ का ही सहायक होता है। नाना शांताय श्रीरस्ति। अथक परिश्रम किए बिना श्री नहीं मिलती। कर्मठ का ही भाग्योदय होता है। सूर्य का उदाहरण देकर बताया गया है कि सूर्य निरंतर चलता है, अतः उसकी कांति अक्षय है। चतुर्युग की सुंदर व्याख्या की गई है कि सोया हुआ व्यक्ति ही वस्तुतः कलयुगी व्यक्ति है। सुप्तावस्था कली है। अंगड़ाई लेता हुआ उठने के लिए तत्पर व्यक्ति द्वापर युग है, खड़ा होने वाला किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए कृत संकल्प व्यक्ति त्रेता युगी है और चल पड़ने वाला कार्य में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त व्यक्ति वस्तुतः सतयुगी है। चतुर्युग की यह सुंदर व्याख्या प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति का द्योतक है। चरण वय मधु विंदति चरण स्वादुम्ब दुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्र यते चरण कलिह शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। 11 भौगोलिक संदर्भ। ऐतरेय ब्राह्मण में कतिपय भौगोलिक स्थानों का निर्देश है, साथ ही यह भी निर्देश है कि उन राज्यों में कौन से शासन पद्धति प्रचलित है। इस दृष्टि से ये भौगोलिक संदर्भ विशेष महत्वपूर्ण है। पूर्व के राज्यों मगध कलिंग बंग आदि में साम्राज्य पद्धति, दक्षिण दिशा के सत्वत राज्यों में भौज्य पद्धति, पश्चिम दिशा के राज्यों सुराष्ट्र कच्छ सौवीर आदि में स्वराज्य पद्धति, उत्तर दिशा के उत्तर कुरु उत्तर मद्र आदि में वैराज्य पद्धति और मध्य देश के कुरु पांचाल शिवि उशीनर आदि राज्यों में राज्य पद्धति प्रचलित थी। इसी प्रकार काशी मत्स्य कुरुक्षेत्र एवं खांडव आदि स्थानों का भी उल्लेख है। 11 चक्रवर्ती महाराज। ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ प्राचीन चक्रवर्ती महाराजाओं का उल्लेख है जिनका ऐंद्र महाभिषेक हुआ था और जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करके चक्रवर्ती महाराज का पद प्राप्त किया था। इस प्रसंग में महाराजाओं के पिता या वंश का नाम और ऐंद्र महाभिषेक के संपादक पुरोहित और ऋषियों के नाम का भी उल्लेख है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। इसका संक्षिप्त विवरण यह है। चक्रवर्ती राजा, पिता या वंश, पुरोहित ऋषि। 1. जन्मेजय परीक्षित कवश पुत्र तुर। 2. शार्यात मनुवंशी भृगुपुत्र च्यवन। 3. शतानिक सत्राजित वाजरत्न के पौत्र सोम सुषमा मन। 4. आम्बष्ठ्य अम्बष्ठ पर्वत और नारद। युधाम सृष्टि उग्रसेन पर्वत और नारद। 6. विश्वकर्मा भुवन कश्यप सुदास पीजवन वशिष्ठ। 8. मरुत अविक्षित संवर्त। 9. अंगराज विरोचन अतिपुत्र उदमय। 10. भरत दुष्यंत ममता के पुत्र दीर्घतमा। दुष्यंत पुत्र भरत के विषय में कहा गया है कि भरत ने जो महान कार्य किए थे वैसे न उसके पूर्ववर्ती और न परवर्ती किसी महाराज ने किए। उसकी ऊंचाई को छूना ऐसा ही है जैसे हाथ से स्वर्ग को छूना। महाकर्म भरतस्य न पूर्वे न परे जनाः दिवं मर्त इव हस्ताभ्याम नोदापुः पंच मानवाः। ऐंद्र महाभिषेक अति प्रतापी राजा का ही होता था। वह दिग्विजय करके महाराजाधिराज बनता था। 4. सुनह शेप आख्यान। इस आख्यान को हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। इसका चरैवेति गान विश्व विश्रुत है। सुनह शेप ऋषि ऋग्वेद प्रथम मंडल के 7 सूक्तों 24-30 के दृष्टा हैं। इनके दृष्ट मंत्रों की संख्या 97 है। सायण ने इसमें ये 3 मंत्र और जोड़कर 100 की संख्या पूरी की है। ये मंत्र हैं त्वम नह ऋग्वेद, स त्वम ऋग्वेद, सुनश्चिक्षेपम ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण 7-3-6 में इस सुनह शेप आख्यान को 100 ऋचाओं से युक्त कहा गया है। ऋक् शतगाथम शौनह शेपम आख्यानम। यह आख्यान धर्मशास्त्र समाजशास्त्र और नृवंश विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। राजाभिषेक के समय राजा को यह आख्यान अवश्य सुनाया जाता था। संक्षिप्त कथा। राजा हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था। वरुण की उपासना से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु शर्त यह थी कि वे वरुण देव को यह पुत्र समर्पित कर देंगे। पुत्र का नाम रोहित रखा गया। राजा वरुण को दिए समर्पण की बात टालते गए। वरुण के शाप से राजा को जलोदर रोग हो गया। बड़ा होने पर पुत्र रोहित वन में चला गया। रोहित घर लौटना चाहता था, परंतु इंद्र उसे रोक लेता है। वह 6 वर्ष तक वन में रहा। उसने वरुण हेतु बलि देने के लिए एक निर्धन एवं लोभी ब्राह्मण अजिगर्त को अपना मध्यम पुत्र सुनहशेप देने के लिए पटा लिया। वह लोभी अजिगर्त वरुण के यज्ञ में स्वयं अपने पुत्र सुनहशेप की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। सुनहशेप ने मृत्यु से बचने के लिए वरुण अग्नि आदि देवों की स्तुति की। अंत में वह मृत्यु से बच जाता है। सुनह शेप अपने लोभी पिता का परित्याग करके विश्वामित्र की गोद में बैठ जाता है। विश्वामित्र ने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया और उसका नाम देवरात देवों द्वारा प्रदत्त रखा। विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, 50 मधुछंदस से बड़े थे, 50 छोटे मधुछंदस और उससे छोटे 50 पुत्र ने विश्वामित्र के इस गोंद लेने के कार्य का समर्थन किया तथा मधुछंदा से बड़े 50 पुत्रों ने इस कार्य का विरोध किया। विश्वामित्र ने अपने उन 50 विद्रोही पुत्रों को शाप दिया कि तुम्हारी संतान चांडाल आदि म्लेच्छ दस्यु हो जाएंगे, वे ही अंध पुंड्र शबर पुलिंद मोतिब आदि नीच हो गए। निष्कर्ष। इस आख्यायिका के कुछ निष्कर्ष ये हैं। वचन भंग का पाप होता है, वह दंडनीय है, अतः राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। 2. इंद्र का रोहित को उपदेश, चरई वेति कर्मठ जीवन ही जीवन है, कर्मठता से ही श्री मिलती है, अन्यथा वह कलयुगी जीवन है। लोभी व्यक्ति कुछ भी निंद्य कर्म कर सकता है। लोभी ब्राह्मण अजिगर्त ने अपने पुत्र को बेच दिया और लोभवश पुत्र की हत्या के लिए भी तैयार हो जाता है। 4. किसी देवी देवता के लिए नरबलि देना अति निंदनीय कर्म है, नरबलि को अमानवीय कर्म घोषित किया गया है। 5. मंत्रों में शक्ति है, अतः रोहित मंत्रों के प्रभाव से बंधन से मुक्त हो गया। 6. मानव हृदय की निर्बलता है, पुत्र लालसा। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से सशर्त पुत्र रोहित प्राप्त किया। 7. यह राजसत्ता का दुरुपयोग था, निर्धन ब्राह्मण अजिगर्त के पुत्र को बलि के लिए खरीदना। 8. बालक का स्वाभिमान, रोहित ने लोभी एवं निर्दय पिता अजिगर्त का परित्याग किया। 9. कर्मणा वर्ण परिवर्तन, ब्राह्मण पुत्र रोहित का क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र का पुत्र होना और उत्तराधिकारी बनना। 10. विश्वामित्र का दोहरा चरित्र, एक और विश्वामित्र में ममता और स्नेह है, गोद में आ बैठे ब्राह्मण पुत्र रोहित को अपना ज्येष्ठ पुत्र बनाया, दूसरी ओर उनमें क्रोध और प्रतिकार की भावना है, अपने बड़े 50 पुत्रों को शाप देकर उनकी संतानों को दस्यु बनाया, संभवतः अनेक जनजातियां इस प्रकार विश्वामित्र के वंशज हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मण 2. शांखायन, कोष्ठक में कौशितकी ब्राह्मण 1. शांखायन ब्राह्मण के रचयिता, यह ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण है, इसको कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके रचयिता शांखायन ऋषि माने जाते हैं। शांखायन आरण्यक में इनकी वंश परंपरा का उल्लेख मिलता है। तदनुसार उद्दालक आरुणि से कहोल कौशितकी को, उनसे गुण शांखायन को और उनसे शांखायन आरण्यक के लेखक को यह विद्या परंपरा से प्राप्त हुई। इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि शांखायन कौशितकी के शिष्य थे, इनसे यह विद्या शांखायन को मिली। शांखायन ने इसको व्यवस्थित करके प्रचलित किया, अतः शांखायन ब्राह्मण नाम प्रचलित हुआ। शांखायन ने अपने गुरु के नाम को भी अमर करने हेतु इसका नाम कौशितकी ब्राह्मण रखा, अतः इस ब्राह्मण के दोनों नाम प्रचलित हैं। चरण व्यूह की एक टीका में महार्णव का एक श्लोक उद्धृत है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण का नाम कौशितकी है किंतु शाखा शांखायनी है। कौशितकी ब्राह्मणम च शाखा शांखायनी स्थिता। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कौशितकी ब्राह्मण नाम स्वीकार किया है। पाणिनी ने भी अष्टाध्यायी में 30 अध्याय वाला ब्राह्मण और 40 अध्याय वाला ब्राह्मण कहकर शांखायन और ऐत्रेय दोनों ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 2. शांखायन ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय। शांखायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय खंडों में विभाजित है। इन खंडों की संख्या 4 से लेकर 17 तक है। संपूर्ण खंडों की संख्या 266 है। खंडों में लंबे गद्य हैं। ग्रंथ में कई स्थानों पर कौशितकी का उल्लेख है और उनका मत दिया गया है। अध्यायों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय। अध्याय 1 अग्न्याधान, अध्याय 2 अग्निहोत्र, अध्याय 3 दर्श और पूर्णमास यज्ञ, अध्याय 4 अनुनिर्वाप्या अभ्युदिता अभ्युदृष्टा आदि 11 विशेषष्टियाँ, अध्याय 5 चातुर्मासी यज्ञ, अध्याय 6 ब्रह्मा के कर्तव्य हवीर यज्ञ, अध्याय 7 से 30 सोमयज्ञ का विस्तृत वर्णन। सोमयागों में अध्याय 8 में अतिथि सत्कार, अध्याय 12 में अपोन त्रिय यज्ञ, अध्याय 15 में मरुत्वतीय शस्त्र, अध्याय 22 और 23 में सड़ह 6 दिन चलने वाले यज्ञ के आज्य प्रउग और मरुत्वतीय शस्त्रों का वर्णन, अध्याय 26 में गवामयन और छंदोमय शस्त्र का वर्णन, अध्याय 28 में प्रैश अनुप्रैश और निगदों का वर्णन, अध्याय 30 में नाभानेदिष्ट नाराशंस बालखिल्य, कुंताप, दधिक्रा, एवयामरुत, अतिरात्र, वाजपेय और अप्तुर्याम का भी वर्णन है। तीन, ऐतरेय और कौशित की शांखायन ब्राह्मणों की तुलना। डॉक्टर कीत ने अपने ग्रंथ में 103 पृष्ठों की भूमिका में ऐतरेय और कौशित की ब्राह्मणों के संबंध, इनके पौर्वापर्य विषय, विवेचन, भाषा और शैली, छंदो विधान, वाक्य विन्यास आदि का अत्यंत सूक्ष्मता से विवेचन किया है। डॉक्टर कीत ने विस्तृत विवेचन के बाद निर्णय दिया है कि कौशित की ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण से परवर्ती है। दोनों की विषय वर्णन शैली में भी अंतर है। इस प्रसंग में कुछ मुख्य बातें यहाँ दी जा रही हैं। एक, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्ण विषय की अधिकता है, परंतु मुख्य रूप से सोमयाग का ही वर्णन है। कौशितकी का क्षेत्र व्यापक है, इसमें सोमयाग के अतिरिक्त सभी प्रमुख श्रौत यागों का वर्णन है। इसमें राजसुई और अश्वमेघ जैसे क्रम प्रचलित यज्ञों को छोड़ दिया गया है। दो, कौशितकी की भाषा सुगठित है, वाक्य विन्यास संक्षिप्त और परिष्कृत है। पूरे ग्रंथ में विषय क्रम सुनिर्धारित हैं, अवांतर विषयों का परित्याग किया है, अनावश्यक आख्यान आदि नहीं दिए गए हैं। ऐतरेय में यह बात नहीं है, उसमें विषयांतर भी है, अतः विषय क्रम टूट जाता है। ऐतरेय में कौशितकी जैसी सुश्लिष्टता नहीं है। तीन, कौशितकी में विभिन्न ऋतुजों के द्वारा बोले जाते वाले मंत्रों, शस्त्रों आदि का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है, ऐतरेय में नहीं। कौशितकी अधिक सुनियोजित क्रमबद्ध है। चार, कौशितकी में तस्योक्तम ब्राह्मणम तदेतद ऋचाभ्युदितम, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, यह ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है, ऐसा प्रयोग बहुत अधिक है। कौशितकी उक्त वाक्यों के साथ ब्राह्मण ग्रंथ का संदर्भ या ऋचा देता है, जिससे विषय स्पष्ट हो जाता है और अनावश्यक विस्तार नहीं होता। ऐसा ऐतरेय में नहीं है, वहाँ अनावश्यक विस्तार मिलता है और पूर्ण संदर्भ नहीं मिलता। पांच, ऐतरेय में पुरोहितों की मंत्र शक्ति स्वीकार की गई है, वे किसी का भी शुभ या शुभ कर सकते हैं। कौशितकी में ऐसी मंत्र शक्ति का वर्णन नहीं है। ऐतरेय में विषय की प्रामाणिकता के विषय में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है। कौशितकी में प्रमाण रूप में कौशितकी का वचन उद्घृत किया जाता है। सात, ऐतरेय में बहुदेवतावाद है, परंतु कौशितकी में रुद्र के विषय में एक पूरा अध्याय है। छ से नौ, इसमें रुद्र के अनेक रूपों का वर्णन है, जैसे भव, शर्व, पशुपति, उग्रदेव, महादेव, रुद्र, ईशान, अशनी। इसे पाश्चात्य विद्वानों के निष्कर्ष निकाला है कि बहुदेवतावाद अवनति की ओर था और शैव धर्म उन्नति की ओर। आठ, डॉक्टर कीथ ने कौशितकी ब्राह्मण के परवर्ती होने के कारण ये प्रस्तुत किए हैं। एक, कौशितकी की रचना अधिक सुसंबद्ध और वैज्ञानिक है। दो, विषयों का क्रम विन्यास अत्यंत तर्क संगत है। तीन, इसमें एकाह एक दिन वाले और द्वादशाह 12 दिन वाले यज्ञ आदर्श रूप में दिए गए हैं, इनसे बड़े यज्ञों का स्वरूप स्वयं निर्धारण करें। चार, शास्त्रों को क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से दिया गया है, ऐतरेय में ऐसा नहीं है। पांच, यद्यपि ऐतरेय में भी रुद्र का महत्वपूर्ण उल्लेख है, पर कौशितकी में उसे बहुत महत्व दिया गया है। रुद्र के महादेव और ईशान नामों का उल्लेख शैव धर्म के विकास का सूचक है तथा कौशितकी के परवर्ती होने का। छह, कौशितकी में पुनर्मृत्यु का उल्लेख है, यह पुनर्जन्म सिद्धांत का सूचक है, यह परवर्ती विचारधारा है। सात, राजा के साथ राजमात्र का उल्लेख करना, राजमात्र का अभिप्राय है राजा के समकक्ष अधिकारी, इनको भी राजा के तुल्य समान दिया गया है, ऐतरेय में राजमात्र का उल्लेख नहीं है। आठ, ऐतरेय में तुम अर्थ वाले अनेक प्रत्ययों का प्रयोग है, लेट लकार वाले रूप है, परंतु कौशितकी में ये बहुत कम है। इन आधार पर डॉक्टर कीत ने कौशितकी को ऐतरेय से परवर्ती माना है। भाषा की दृष्टि से कौशितकी से ऐतरेय की भाषा सरल और रोचक है। चार, शांखायन ब्राह्मण के कुछ विशिष्ट संदर्भ। एक, अग्निदेव का महत्व। अग्निदेवता के आधार पर ही सारे देव जीवित हैं। अग्निदेवों का मुख है, अग्नि प्रथमम देवतानाम यजति अग्निर्वय देवानाम मुखम। दो, वाक का महत्व। वाक वाणी की वांग्मय, वाक धनमय का आधार है, मनोगत भाव को वाणी ही प्रकट करती है। इस प्रकार भाव, भाषा और साहित्य का आधार वाक वाणी है। मनोवाचम अप्येति वांग्मयम भवति। तीन, सत्य ज्योति है, देवता है, सत्य रूपी ज्योति से ही आत्मा पवित्र होती है। इस ज्योति से वांग्मय आत्मा सत्यमय होती है, देवता सत्य स्वरूप है। ज्योति रित्याह स सत्यम वदति तस्य वांगमय आत्मा सत्यमयो भवति सत्यमया उदेवाह। चार वेद त्रयी का सार भूर्भुवः स्वः, ऋग्वेद का सार भुवः, यजुर्वेद का सार भुवः और सामवेद का सार स्वः है। भू इति ऋचाम, भुव इति यजुषाम, स्वरिति सामनाम। पांच विष्णु का महत्व, अग्नि नीचे की ओर है और विष्णु ऊपर, इनके मध्य में 33 देवता हैं। अग्निर्वय देवानाम अवरार्ध्य विष्णु परार्ध्य। छह उदीच्य विद्वानों की प्रशंसा, उत्तर दिशा के विद्वानों की प्रशंसा में कहा गया है कि उदीच्य विद्वान अधिक योग्य होते हैं, अतः भाषा विज्ञान के लिए उदीच्यों के पास जाना चाहिए। पाणिनि भी उदीच्य थे। उदीच्याम दिशि प्रज्ञा तराम वाग उद्यते उदच्य उदंच एव यन्ति वाचम शिक्षितुम। सात प्राण ही 33 देव हैं, 11 प्राण प्रयाज हैं, 11 अपान अनुयाज हैं और 11 समान प्राण उपयाज हैं। इस प्रकार प्राण ही 3 रूपों में सर्वदेवमय हैं। प्राणा वै प्रयाजाह अपाना अनुयाजाह समाना उपयाजाह। आठ रुद्र का महत्व, रुद्र ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं, वही ज्येष्ठ भी हैं, रुद्रो वही ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम। नौ अग्निष्टोम सर्वोत्तम याग, अग्निष्टोम ज्योति है अतः इसे ज्योतिष्टोम भी कहते हैं, यह सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है। ज्योतिर्वा अग्निष्टोम ज्योतिरेश एष तपति। दस पशु हत्या निंद्य है, बहुत सुंदर शब्दों में पशु हत्या की निंदा की गई है। जो पशु हत्या करते हैं और पशु मांस खाते हैं उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि परलोक में वे पशु ही उन मनुष्यों का मांस खाएंगे। यह पशु बलि के विरुद्ध एक क्रांति मंत्र है। अस्मिन् लोके मनुष्याः पशुन् अश्नन्ति एवमेव अमुष्मिन् लोके पशो मनुष्यान् अश्नन्ति। 11 छंदों का निर्वचनात्मक अर्थ शक्वरी छंद धातु से बना है। इन छंदों से इंद्र वृत्र को मार सका अतः इनका नाम शक्वरी पड़ा। ये छंद शक्ति दाता है। एताभिर्वा इंद्रो वित्रम अशकदहन्तुम तस्माद् शक्वर्यः। 12 वाणी विश्वामित्र है, वाणी से यज्ञ किया जाता है, वाणी ही विश्वामित्र है। वाग वै विश्वामित्र वाचा यज्ञ स्थायते। 13 शिल्प का महत्व, शिल्प में ही अंतरिक्ष आदि की स्थिति है, यह ईश्वरीय लीला है कि बिना आधार के लोक स्थित है, वह ईश्वरीय शिल्प है। अंतरिक्ष अप्रतिष्ठानम शिल्पेष्वेव प्रतिष्ठि प्रतितिष्ठन्तो यन्ति। 14 नृत्य गीत और वाद्य शिल्प है, शिल्प के 3 रूप है, नृत्य गीत और वाद्य, इन तीनों को मिलकर संगीत होता है। त्रिवृद्ध वै शिल्पम नृत्यम गीतम वादि त्रयम इति। 15 गायत्री ज्योति है, गायत्री ज्योति है, गायत्री पापों को नष्ट करती है। ज्योतिर्वय गायत्री यज्योतिषाम पापमानम अपद्नन्ति।